بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا گن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہم نے منوش کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی بھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جس سے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتیانت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ ریڈیو تیران کی ہندی سیوا ہے اور شروتاؤ، قمر عباس کا سلام سویکار کریں۔ آپ ہمارا پرسارن شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 7,445 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج گروار ہے، آذر کی 6 نومبر کی 26 اور ربیع الثانی کی 10 تاریخ۔ ہمارے اس سمے کی سبھا کے کارکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سماچار سنیں گے، اس کے بعد دینک کارکرم راجنیتک چرچا پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ ہمارا ساپتاہک کارکرم آج کی بات سنیں گے۔ آج کی بات کے بعد ہم اپنا دوسرا ساپتاہک کارکرم ٹکاؤ آرتھک وکاس پیش کریں گے۔ تو یہ تو تھی یہ کارکرم کی روپ ریکھا، اور اب سے کچھ ہی کھڑوں میں آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب پیش ہے سماچار۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا ہے کہ کوئی ایران کو الگ نہیں کر سکتا۔ ایرانی سینا نے کہا ہے کہ ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والوں کو کرارا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی پردھان منتری عرب دیشوں کی یاترا کے لیے بے چین، مگر ویرودھ کا ڈر بھی۔ اور پاکستان او آئی سی میں کشمیر کا مدعا ضرور اٹھائے گا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیں۔ راشٹرپتی حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران علاقے بلکہ دنیا کی ضرورت کی چیزیں، وشیش کر سستی ارجا کی آپورتی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ راشٹرپتی حسن روحانی نے گروار کو کہا کہ ایران کی ارتھ ویوستھا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک بڑی اور مضبوط ارتھ ویوستھا ہے، اور علاقے کے کسی بھی دیش میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ وہ 3 ورشوں تک اس پرکار کے ویاپک آرتھک یدھ میں ٹکا رہے اور وجئی بھی ہو۔ راشٹرپتی روحانی نے اس بات کا الیکھ کرتے ہوئے کہ ایرانی راشٹر نے ہمیشہ اپنی سنسکرتی اور سبھیتا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کہا کہ ایران بھوگولک درشٹی سے بھی ایک مہتوپورن دیش ہے، اور دنیا کی کوئی بھی شکتی ایران کو نہ علاقے سے اور نہ ہی دنیا سے دور رکھ سکتی ہے۔ ایران کی سشست سینا کے کمانڈر نے کہا ہے کہ جہاں بھی دشمن نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے، وہاں اسلامی گڑتنتر ایران کی نو سینا پوری شکتی کے ساتھ سامنے آئی ہے اور گوروشالی رہی ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی سشست سینا کے کمانڈر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے بدھوار کو نوسینا دیوس کے موقع پر کہا کہ چین ساگر سے اٹلانٹک مہاساگر تک ایرانی جہازوں کی سفل اپستھتی، اسی طرح عدن کی کھاڑی سے لے کر باب المندب تک اور بھو مدھیہ ساگر سے لے کر دکشن افریقہ تک ہر جگہ دیش کی نوسینا نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ کمانڈر جنرل موسوی نے کہا کہ ایران کی نوسینا یدھک اسپیڈ بوٹوں اور آدھونک یدھک نوکاؤں سے لے کر ہر طرح کی پنڈوبیاں دیش کی آنترک شمتاؤں اور وشیشجوں کے سہارے بنانے میں سفل ہوئی ہے۔ اسی پرکار سنچار، میزائل اور رکشا پرنائی میں بھی آنترک وشیشجوں کی ہی دین سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوسینا کی یدھ رننیتی خود کی ہے جو اس نے سمندری یدھ کے انوبھوں سے حاصل کی ہے۔ جنرل کمانڈر موسوی نے کہا کہ آج ایران کی نوسینا نے دنیا میں سمندری طاقت میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोरोना संक्रमण से 13,000 से अधिक नए मामलों और गत 24 घंटों में 482 बीमारों की मौत की सूचना दी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने गुरुवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि गत 24 घंटों के दौरान 13,961 नए बीमारों की पहचान की गई है, जिनमें से 2,447 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए, जबकि बाकी को आरंभिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में कोविड 19 के कुल संक्रमितों की संख्या 9,08,346 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 482 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद इस बीमारी से ईरान में मरने वाले की कुल संख्या 46,689 तक पहुंच गई। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी के अनुसार अब तक 6,33,275 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। बहरीन इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो अपनी यात्रा टाल दें। नेतन्याहू अगले हफ्ते मनामा के दौरे पर जाने वाले थे। इसराइली मीडिया ने जानकार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मनामा सरकार ने नेतन्याहू को यात्रा से रोक दिया है, जिसका कारण तो पता नहीं चल सका, लेकिन कहा जाता है कि मनामा की शाही सरकार चाहती है कि नेतन्याहू केवल बहरीन की यात्रा न करें, बल्कि जब उन्हें इमारात की यात्रा करनी हो तो उसके साथ बहरीन की भी यात्रा करें। गत मंगलवार को नेतन्याहू ने कहा था उन्हें बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद की ओर से बहरीन की यात्रा का न्योता मिला है, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में बहरीन यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। मगर बुधवार को इसराइल की वल्ला वेबसाइट के कूटनीतिक मामलों के संवाददाता बाराक रावित ने कहा कि नेतन्याहू 1 दिसंबर को बहरीन और 2 दिसंबर को इमारात जाने वाले थे, मगर इमारात ने नेतन्याहू की यात्रा का कार्यक्रम ये कहते हुए रद्द कर दिया कि तारीख उचित नहीं है, जिसके बाद बहरीन ने भी नेतन्याहू को यात्रा से रोक दिया। रावित ने कहा कि जब बहरीन ने नेतन्याहू की यात्रा रद्द कर दी तो इसराइली विदेश मंत्री गाबी अश्कनाजी की भी बहरीन यात्रा रद्द कर दी गई। इसराइल ने सितंबर महीने में बहरीन और इमारात के साथ व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद इस्लामी जगत में जनता के स्तर पर इस समझौते की कड़ी निंदा की जा रही है। बहरीन और इमारात के भीतर भी समझौते का विरोध किया जा रहा है, जिसे देखते हुए इसराइल से समझौता करने वाली सरकारें घबरा रही हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा इस्लामी सहयोग संगठन OIC की बैठक के एजेंडे पर है और ये विषय कभी संगठन के एजेंडे से हटता ही नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि OIC की मंत्रीय बैठक के एजेंडे में कश्मीर का मुद्दा शामिल है और एजेंडे में ये मुद्दा न होने की अफवाह भारत की ओर से फैलाई जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि कई दशकों से OIC अपनी बैठकों और विदेश मंत्रियों की काउंसिल के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के बारे में भारत ने जो गैर कानूनी कदम उठाया है, उसके बाद से OIC इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के OIC संपर्क ग्रुप ने पिछले 15 महीनों में 3 बार मुलाकात की और उसकी आखिरी बैठक इसी साल जून महीने में विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुई थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बैठक में भारत से मांग की गई कि वो गैर कानूनी कार्रवाइयों को बंद करे और गैर कानूनी रूप से कब्जे में लिए गए इलाकों में मानवाधिकार के गंभीर हनन को रोके। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि कुछ पश्चिमी देश सीरिया की कानूनी सरकार को गिराने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली रेबेंजिया ने बुधवार रात सीरिया की ताजा स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश करते हुए पश्चिमी कहा कि कुछ पश्चिमी देश सीरिया की कानूनी सरकार को गिराने के लिए अब भी भारी भरकम बजट खर्च कर रहे हैं। वसीली रेबेंजिया सुरक्षा परिषद में सीरिया के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तहरीर शाम नामक आतंकी गुट के आतंकवादी इदलिब शहर में अशांति का कारण बने हैं। नेबेंजिया ने कहा कि मॉस्को कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि सीरिया में एक बार फिर आतंकवादी गुट सिर उठाएं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के बहाने अफगानिस्तान में अमरीका की बरसों से जारी उपस्थिति के बावजूद देश हालिया सर्वे में दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताया गया है। अर्थव्यवस्था और शांति की संस्था IEP ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि अफगानिस्तान निरंतर दूसरे साल भी विश्व में आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहने वाला देश बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान 41% लोगों के आतंकवाद से मौत के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी आतंकवाद में सबसे अधिक ग्रस्त होने वाले देश के रूप में जाना गया। यह रिपोर्ट ऐसी दशा में प्रकाशित हुई है कि जब अमरीका लगभग 2 दशकों से अफगानिस्तान में इस दावे के साथ उपस्थित है कि वह इस देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा। ऐसी दशा में है कि इस देश में अमरीका के नेतृत्व में तैनात विदेशी सैनिक भी आम नागरिकों की मौत की एक बड़ी वजह है। IEP की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष पूरी दुनिया में होने वाले कुल आतंकवादी हमलों में से आधे हमले केवल अफगानिस्तान में हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पूरी दुनिया में 13,826 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं, जिनमें से 5,700 लोग अफगानिस्तान में मारे गए। इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान और भारत का नंबर इसके बाद आता है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, सऊदी अरब ने इसराइल के प्रधानमंत्री और मोसाद के प्रमुख की मेजबानी की है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया, उसके इस कदम से विश्ववासियों विशेषकर इस्लामी जगत में क्या संदेश जाएगा। इराक की राजधानी बगदाद किसी समय ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करता था, पर उस पर 3 बार हमले किए गए। पहली बार मंगोलों ने, दूसरी बार आजादी और आतंकवाद से मुकाबले के नाम पर अमेरिका ने, और तीसरी बार आतंकवादी गुट दाइश ने उस पर हमला किया।
متكبرة هي امريكا واسرائيل وبريطانيا۔
आज भारत के संविधान दिवस पर इस देश के हरियाणा राज्य के किसानों ने दिल्ली जाने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने वहां उन्हें जाने से रोक दिया। इस पर पुलिस और उनके बीच झड़पें भी हुई हैं।
आज संविधान दिवस है, कौन सी शांति व्यवस्था भंग हो रही है?
श्रोताओं, सऊदी अरब ने इसराइल के प्रधानमंत्री और मुसाद के प्रमुख की मेजबानी की है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया, उसके इस कदम से विश्ववासियों विशेषकर इस्लामी जगत में क्या संदेश जाएगा। उसके जवाब में विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि यमन में सऊदी अरब को विफलता पर विफलता मिल रही है और यमनी सेना और स्वयं सेवी बल के जवानों ने सऊदी अरब की खोखली शक्ति की हवा निकाल दी है, इसलिए वो यमन की निर्दोष जनता के दमन में जानवी शासन की मदद चाहता है। पूरी जानकारी के साथ साथी मोहम्मद अली कुमी।
जब अरामको यमनी मिसाइलों का निशाना बनी तो ठीक उसी वक्त सऊदी अरब इसराइली प्रधानमंत्री और मोसाद के प्रमुख का मेजबान था और मोहम्मद बिन सलमान से न्यूम शहर में मुलाकात की। यद्यपि विदित में इस मुलाकात का लक्ष्य संबंधों को सामान्य बनाना था, परंतु प्रतीत यह हो रहा है कि राजनैतिक और सैनिक दृश्य से जिस दलदल में सऊदी अरब फंस गया है और यमन में उसे विफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए बिन सलमान इसराइल से भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। एक यमनी के विचार, ये मुलाकातें सैन्य लक्ष्यों के लिए हुई हैं और इनका संबंध यमन से है। सऊदी अरब जो कुछ कर रहा है उसमें अमरीका समन्वयकर्ता की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी यमनी प्रतिरोध और यमन के खिलाफ है। एक दूसरा यमनी कहता है कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, पिछले 2 दिनों में यमनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने हमारे हथियारों को देखा है और वे जानते हैं कि उनके पास हमारा मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे मिसाइल और ड्रोन सऊदी अरब के अंदर तक जाते हैं।
ملفات كثيرة تثقل كاهل السعودية.
سعودی عرب نے یمن کے خلاف جو یدھ آرم کر رکھا ہے وہ ریاض کے لیے بہت مہنگا پڑ رہا ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زائونی ادھیکاریوں نے بن سلمان سے جو ملاقات کی ہے اس کے ایک بھاگ کا سمبندھ اسی وشے سے تھا. سعودی حملہور, اس کے گٹھ بندھن اور اس کے بھاڑے کے ٹٹووں کی سینی استھتی ٹھیک نہیں ہے, خاص کر اس لیے کہ انصار اللہ اور یمنی سرکار نے کافی پرگتی کر کے رون کی استھتی بدل دی ہے. یہ ایسی حالت میں ہو رہا ہے جب عدن میں منصور ہادی کی اپستھتی بھی پربھاوی نہیں ہے, کیونکہ وہ حملہور کے پچھ لگو ہیں اور ان کھیتروں کی استھتی شانتی پورن ہے جو انصار اللہ کے نینترن میں ہیں.
السعودیہ مربکہ ولا تملک قرار وہی تتخبط.
سعودی عرب بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اس کے پاس فیصلہ کرنے کی شمتا نہیں ہے, وہ دن پرتی دن اپنے انت کے نکٹ پہنچ رہا ہے, اس کے روب کھوکھلے ہیں. سعودی عرب اسرائیل اور امریکہ کے آدیشوں کا پالن کرتا ہے.
الضغوط الخارجية وتقارير المنظمات الدولية.
ودیشی دباؤ, مانوادھیکاروں کا ہنن, عام ناگرکوں کی ہتیا, بھوک اور یمن کے پریویشٹن کے بارے میں انتراشٹری سنگٹھنوں کی رپورٹیں وہ چیزیں ہیں جو سعودی سرکار کے لیے چنوتی بن گئی ہیں. اسی پرکار سعودی عرب امریکہ میں نئی سرکار کے آنے سے چنتت ہے. اسی کارن وشلیشک بنیامین نیتن یاہو اور بن سلمان کے بیچ ہونے والی بھینٹ کو ریاض سرکار کی اور سے بھیک مانگنے کے پریپریکش میں دیکھ رہے ہیں.
ای ادارت امریکیت جدید.
سنا سے آئی آر آئی بی کے لیے عبداللہ یوسفی کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کارکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کارکرم راجنیتک چرچا.
عراق کی راجدھانی بغداد کسی سمے گیان وگیان کا کیندر ہوا کرتا تھا, پر اس پر تین بار حملے کیے گئے. پہلی بار منگولوں نے, دوسری بار آزادی اور آتنکواد سے مقابلے کے نام پر امریکہ نے, اور تیسری بار آتنکوادی گٹ داعش نے اس پر حملہ کیا. روچک بات یہ ہے کہ امریکہ کے پورو ودیش منتری ہلری کلنٹن نے سویکار کیا ہے کہ داعش کو بنانے والا امریکہ ہے. ان کے اس دعوے سے بھلی بھانتی سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ آتنکواد سے مقابلے میں کتنا گمبھیر و سچا ہے. ساتھ ہی سید حسن عباس.
یہ بغداد ہے, وہ شہر جو ایک دن گیان وگیان کا کیندر تھا, لیکن تین بار یہ نگر پاشوک حملوں کا نشانہ بنا. پہلی بار منگولوں نے سن 1258 عیسوی میں اس پر حملہ کیا, جبکہ دوسری بار امریکہ نے آزادی کے بہانے سن 2003 میں اس پر قبضہ کر لیا, اور عراق کے وبھن پرانتوں میں بہت سے لوگوں کا جنسنہار کیا. امریکہ کے ان کرتیوں سے وشو واسیوں میں یہ سندیش گیا کہ وہ بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے.
ما شفنا بعد 2003 كيف العراقيين دفعوا دماء غالية.
سن 2003 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے پریہ جنوں کا خون بہایا گیا. امریکہ آزادی کے بہانے آیا تھا, عراق پر قبضہ کرنے کا لکش کھیتر میں اسرائیل کے ہتوں کا سمرتھن کرنا تھا.
متکبر ہی امریکہ و اسرائیل و بریطانیہ.
امریکہ, برٹن اور اسرائیل تینوں اہنکاری شکتیاں ہیں, اور ایک کھیتر کے خلاف شڈینتروں میں تینوں ساتھ ہیں. یہاں تک کہ عراق پر قبضہ کرنے اور نردوش عراقیوں کی ہتیا میں ان کی مہتوپورن بھومیکا رہی ہے. بغداد پر تیسری بار حملہ داعش نے کیا.
العراق جزء
امریکی چاہتے ہیں کہ عراق مدھیہ پورو کی ان کی یوجنا کا ایک بھاگ رہے. وہ اس دیش میں شانتی و سرکشا نہیں چاہتے. اس آدھار پر انہوں نے داعش کو بنایا تاکہ وہ ہمیشہ عراقیوں کے لیے خطرہ بنا رہے, لیکن راشٹری ایک جٹا کے کارن یہ شڈینتر وفل ہو گیا. عراق پر قبضے کے 17 ورشوں کے بعد عراقی سمجھ گئے کہ امریکہ نہ کیول ان کا سمرتھک نہیں ہے, بلکہ اپنے ہتوں کو سادھنے کے لیے وہ کسی بھی انتراشٹری قانون کے پرتی کٹی بدھ نہیں رہا ہے. اب عراقیوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکی راشٹرپتی ڈیموکریٹ ہے یا ریپبلکن، کیونکہ دونوں ہی پارٹیوں کے ہاتھ نردوش عراقیوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں۔ جلال خالدی، IRIB نیوز، بغداد۔
آج بھارت کا سمویدھان دیوس ہے۔ اس اوسر پر بھارت کے ہریانہ راج کے کسانوں نے دلی جانے کا پریاس کیا، پرنتو پولیس نے وہاں انہیں جانے سے روک دیا۔
بھارت کی کیندر سرکار کے 3 کرشی قانونوں کے ورودھ کسانوں کے 2 دیوسیے دلی چلو آندولن کے کارن پورے ہریانہ میں جن جیون پربھاوت ہوا ہے۔ آج سمویدھان دیوس کے اوسر پر کسان کرشی قانونوں کا ورودھ کر رہے ہیں۔ ہریانہ کی بھاجپا سرکار نے پنجاب سے لگی اپنی سبھی سیماؤں کو پوری طرح بند کر دیا ہے اور بڑی سنکھیا میں سرکشا بلوں کو تعینات کر دیا ہے۔ پنجاب کے کسان بھی کرشی سمبندی قانونوں کے خلاف دلی چلو مارچ پر ٹریکٹروں اور ٹرالیوں سے نکلے ہیں۔ ہریانہ سرکار نے کہا تھا کہ وہ کسانوں کے دلی کی اور مارچ کرنے کے مد نظر 26 اور 27 نومبر کو پنجاب سے لگی اپنی سیماؤں کو بند کر دے گی۔ پنجاب کے کسان 30 کسان سنگٹھنوں کا پرتنیدھتو کر رہے ہیں۔ ہریانہ کے ادھیکاریوں نے پردرشن کو روکنے کے لیے کئی کھیتروں میں دھارا 144 لگا دی ہے۔ اسی بیچ امبالہ اور کروکشیتر ضلعوں میں پردرشن کر رہے کسانوں کو تتر بتر کرنے اور انہیں دلی جانے سے روکنے کے لیے ان پر پانی کی بوچھاریں کی گئیں اور آنسو گیس کے گولے داغے گئے۔ پولیس اور کسانوں کے بیچ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پراپت سوچنا کے انوسار کسانوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور بیریگیٹس توڑ کر ندی میں پھینک دیا۔ کسان سنگٹھنوں نے ہریانہ کی سیمائیں سیل کرنے کے مکھیہ منتری منوہر لال کھٹر کے فیصلے کی نندا کی ہے۔ کانگریس پرشاست راجے پنجاب کے مکھیہ منتری امریندر سنگھ نے ہریانہ کے مکھیہ منتری منوہر لال کھٹر کو آڑے ہاتھوں لیا اور پوچھا کہ کیا سمویدھان دیوس کے دن بھی کسانوں کو شانتی پورن طریقے سے راشٹریہ مارگ سے گزرنے کی انومتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وڈمبنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ ہریانہ پولیس بربر کاروائی کر رہی ہے۔ ہریانہ پولیس نے کسانوں کے ساتھ ہریانہ سے دلی کی اور کوچ کر رہے سوراج انڈیا کے راشٹریہ ادھیکش یوگیندر یادو کو 50 سے ادھک کسانوں کے ساتھ گروگرام میں حراست میں لے لیا۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ کورونا کے دوران ہی کیندر سرکار کسان ویرودھی یہ 3 قانون لائی تھی، اتا ہم اپنا آندولن بھی جاری رکھیں گے۔
پولیس ہمیں کہہ رہی ہے ہم شانتی ویوستھا کو بھنگ کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سمویدھان دیوس ہے، کون سی شانتی ویوستھا بھنگ ہو رہی ہے؟ ٹریکٹر کے اوپر کسان دلی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کون سی شانتی ویوستھا بھنگ ہو رہی ہے؟
شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھک وکاس پر، اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم آج کی بات۔
آج کی بات، دوستو، کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے۔ حسن عباس کا سلام سویکار کریں۔ آج ہم چرچا کریں گے بھارت میں مسلم نیتریتو کی ضرورت اور اس کے مارگ میں موجود چنوتیوں و رکاوٹوں کی۔ بھارت کے راج بہار میں حال ہی میں سمپن ہوئے ودھان سبھا چناؤ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے 5 سیٹیں حاصل کیں، جس کے بعد بھارت میں مسلم نیتریتو کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ بھارتیہ مسلمان ایسے نیتریتو کی کمی کی مار جھیل رہے ہیں جو پربھاوی ڈھنگ سے ان کی بات دیش اور دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ हिंसक भीड़ द्वारा मुसलमानों पर हमले, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना, मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, महामारी से लड़ने की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करना, यहाँ तक कि अदालतों में उन्हें बेइज्जत किया जाना, इस प्रकार की अहम समस्याएं हैं जिन्हें आज एक सामान्य स्थिति मान लिया गया है। इन बातों के कारण मुस्लिम नेतृत्व की जरूरत का आभास पहले से ज्यादा होने लगा है। नए हालात ने मुस्लिम नेतृत्व की आवश्यकता पर बात करने की स्थिति को तैयार तो किया है, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम नेतृत्व कैसा होना चाहिए। भारत के मुसलमानों, विशेष रूप से पढ़े लिखे लोगों में ये इच्छा है कि उनके पास एक दूरदर्शी नेतृत्व हो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों और जनता की आकांक्षाओं को समझ सके। बिहार विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कहा जा रहा है कि AIMIM मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभरी है और इसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM के महाराष्ट्र से चुने गए सांसद इम्तियाज जलील कहते हैं कि इस समय मुसलमानों के पास ओवैसी से बेहतर कोई नेता नहीं है। उनका कहना है कि क्या मुसलमानों का कोई उतना लोकप्रिय नेता है जितना ओवैसी हैं? इतना डट कर जम कर बोलने वाले, संसद के अंदर मुसलमानों के लिए बोलने वाले और कोई मुस्लिम नेता नहीं है। तेहरान में रह रहे भारतीय मामलों के विशेषज्ञ अली अब्बास रिजवी भारत में मुस्लिम नेतृत्व की जरूरत के महत्व पर बल देते हुए कहते हैं,
आजादी के बाद भारत में जिस तरह से मुसलमानों के एक नेतृत्व मिलना चाहिए था, एक क़यादत लीडरशिप मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई। और आजादी के बाद से ज्यादातर समय में कांग्रेस के साथ मुसलमान जुड़े रहे, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को फायदा होना चाहिए था या फायदा पहुंचाना चाहिए था, उनके जो अधिकार थे, उनके जो हकूक थे, मिलने चाहिए थे, वो न तो कांग्रेस ने दिए। उसके बाद जो क्षेत्रीय जो पार्टियां बनी उसने भी मुसलमानों के अधिकार दिलवाने की बात की, नारा लगाया, लेकिन अपने कैंडिडेट को मुसलमानों की शक्ल में उन्होंने खड़े किए, लेकिन जहां तक मुसलमानों के अधिकार देने की बात आई, उन्होंने कभी कोई भी अधिकार जिस तरीके से मुसलमानों को मिलना चाहिए था उन्हें नहीं दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। इसलिए अगर देखा जाए तो नेतृत्व और संगठन बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि एक संगठन, एक नेतृत्व जब मजबूत होता है किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी समुदाय या समाज के लिए, तो उसको शक्ति मिलती है, फिर वो आगे बढ़ता है। बिहार में जो अभी चुनाव हुआ है, जाहिर है कि ओवैसी की पार्टी ने उन क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की जो है वो अक्सरियत है, जहां डोमिनेट करते थे, जहां ज्यादा मुसलमानों का प्रभाव रहा है, वहां पर उन्होंने एक बेहतर तरीके से जो है वो अपने को पेश किया और जाहिर है वहां पर उनको जो है वो सफलता मिली।
भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व की राह में मौजूद रुकावटों का उल्लेख करते हुए अली अब्बास रिजवी का कहना है,
देखिए इसकी वजह तो खुद हम दूसरों को कहने से पहले अपने आप को कहेंगे कि हम खुद बिखरे हुए हैं। हमने जमीयत उलमा बना ली, हमने जमात इस्लामी बना ली, बाद में के वर्षों में आप देखेंगे आमिर रशीदी साहब ने एक पार्टी बना ली है, उसके अति और राजनीति के क्षेत्र में जब आप आए तो कोई 30 पार्टी बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। खुद जो हमारे धार्मिक नेता हैं उनमें जो है वो एकजुटता नहीं पाई जा रही है, ये खुद हमारी अपनी गलती है। इसके अलावा हमारी गलतियों से जो है वो जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने भी फायदा उठाया है। कांग्रेस ने तो जाहिर है कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया, और जाहिर ये जो सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, ये नहीं चाहेंगी कि मुसलमान कोई अपना एक अलग नेतृत्व बनाए और मुसलमान कोई एक अलग अपना संगठन बनाए और वो इन पार्टियों को चैलेंज करें। तो जाहिर है कि इसमें इनका भी खेल है, इनका भी बड़ा हाथ है, और ये पार्टियां मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देती है, एकजुट नहीं होने देती है। आप देखें कि मुसलमान पार्लियामेंट में तो जाता है, आज उसकी भागीदारी अगर इस 2020 में आप देखें तो पार्लियामेंट हो, संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और विधानसभा आप देखें कि प्रतिनिधित्व इसका कम होता जा रहा है और जो मुसलमान जीत के लोकसभा या संसद में जाता भी है वो मुसलमानों की आवाज के लिए आवाज नहीं उठाता। आप यही एनआरसी और सीए का मसला देख लें या तीन तलाक का मसला देख लें, इसके अलावा किसी ने बातें नहीं की।
भारत में स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद मुसलमानों ने कभी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया और न ही उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मुस्लिम नेताओं का सहारा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो पार्टी बहुसंख्यकों का ख्याल रख सकती है वो उनके हितों का भी ख्याल रख सकती है। लेकिन सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को वोट का बंधक बनाने की कोशिश की और इस राजनीति से वे तंग आ चुके हैं।
भारत की आजादी के बाद भारत के मुसलमान ने अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए न तो मुस्लिम लीडर्स का सहारा लिया न ही मुस्लिम पार्टीज का सहारा लिया। मुस्लिम एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स मुसलमानों ने प्रेफर नहीं की देश में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि पूरे देश को एक बेहतर, सब लोगों को जोड़ के रखने वाली जो पार्टी है, जो पार्टी मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस जीत सकती है, वो पार्टी हमारा भी हित देख सकती है। और लोकतंत्र के लिए यही सबसे खूबसूरत चीज होती है, जब कोई पार्टी किसी एक समुदाय विशेष का हित नहीं देख रही, पूरे देश का हित देखने की कोशिश कर रही। तो आज क्या बदल गया? बदलना मुसलमानों का मिजाज नहीं बदला, गड़बड़ राजनीति में आ गई। मैं कई बार कहा करता हूं कि भारत के मुसलमान के साथ वही हो रहा है, वही हुआ है जो कि अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ हुआ। क्या होता है? अमेरिका में दो बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं करती, क्यों? क्योंकि हमें तो इसका वोट ही नहीं मिलता। और डेमोक्रेट पार्टी भी उनके लिए कुछ नहीं करती, क्यों? कि भाई घूम फिर के वोट तो हमें ही पड़ेगा, क्या करना। ये ट्रेजिडी आज भारत के मुसलमान को महसूस होती है कि बीजेपी तो हमारे लिए कुछ करेगी नहीं, बीजेपी को लगता है कि हमारे को वोट नहीं मिलेगा इनका, हम इनका कुछ करके क्या करें। और ये जो कांग्रेस टाइप की सेकुलर पार्टियां हैं, इनको लग गया है कि देखो घूम फिर के कितना भी गुस्सा हो, हमसे झगड़े, हमसे नाराज भी होंगे, वोट तो हमें ही डालेंगे और इनके पास ऑप्शन क्या है। और जो मैं कई बार कहता हूं, इस देश की सेकुलर पार्टी ने मुसलमानों को एक वोट का बंधक बनाने की पॉलिटिक्स की और अब मुसलमान तंग आ गया इस राजनीति से।
योगेंद्र यादव का कहना है कि सेकुलर पार्टियों से मोह भंग के कारण ही मुसलमान अपने अलग नेतृत्व के इच्छुक दिखाई देने लगे हैं और उनका कहना है कि कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो उनकी बातें भी सुने और उनके लिए काम भी करे।
पहले मुसलमान को कांग्रेस जैसी पार्टियों में लगता था कि देखो हिंदू भी इनके साथ हैं, हम भी साथ जुड़ेंगे तो ले दे के खींचतान में ठीक है, किसी को कुछ कम किसी को कुछ ज्यादा, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब मुसलमान को लगता है कि मेजोरिटी तो इनके साथ है नहीं, मेजॉरिटी कम्युनिटी में इनका कोई से नहीं है, तो मैं ही क्यों करूं। तो जिस सेकुलर राजनीति के साथ क्या हो रहा है, दोनों तरफ से विश्वास टूट रहा है। हिंदू को लगता है इस तमाम प्रोपेगेंडा और इस सब चीज के बाद इस देश की 80% जो पॉपुलेशन है उसको लगता है कि हाय हम तो माइनॉरिटी हैं, हाय हमारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, हमारे साथ तो भेदभाव हुआ है, तो वो अब सेकुलर पार्टी राजनीति से दूर हो रहे हैं। और मुसलमान को लगता है कि मेरे लिए तो आपने कभी कुछ नहीं किया, मैं अब आपके साथ क्यों रहूं। इसका परिणाम है MIM जैसी पार्टी का उदय। पूरे देश में मुस्लिम्स का सेकुलर राजनीति से जो मोह भंग हुआ है उसकी वजह से अब मुसलमानों में एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स, मुसलमानों की अपनी पार्टी, और जैसे जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेगी उससे हिंदू एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी, जैसे जैसे हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों में ये इच्छा बढ़ रही है कि भाई हमारी भी कोई अलग पार्टी हो, कोई हो जो कि हमारी बात बोले।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों द्वारा उनकी पार्टी पर लगाए जाने वाले आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदुओं व दलितों के भी वोट मिले हैं और इससे पहले महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है।
मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं, जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है, अरे भाई क्या जनता के आपकी गुलाम है? आप नहीं हरा सक रहे बीजेपी को, आप में ताकत नहीं है, आपकी वजह से जीत जाते हैं, आप इतने ज्यादा सीटें ले लेते हैं, तो ये इसका तो हमको फिक्र नहीं है, ये तो लड़ना है, हमारा काम लड़ना है, हमको तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्ट्रगल करने हमको आता है, दूसरा तो कुछ आती नहीं हमको। आप ये समझ रहे हैं कि हमको सीमांचल में जो 5 हमारे एमएलए जीते हैं उनको दलित वोट नहीं मिला? आप ये समझ रहे हैं कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया हमको? बहुत बड़ी तादाद में दिया, खास तौर से अमूर में, बैसी में और कोचादामन में। ये एक मिजाज बन गया है कि नहीं वो इनको ये हिंदू विरोधी है। कहां हिंदू विरोधी है? मैं तो आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे दलित भाइयों का वोट मिला है और हमारे गैर हमारे हिंदू भाइयों का भी वोट मिला है। तो ये बोलना, अच्छा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील एमपी बने, कितने मुसलमान है वहां पर, और 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हरा दिया, इस पर कोई बात ही नहीं करता।
सच्चाई यह है कि भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व किसी एक नेता के माध्यम से नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें कई नेताओं की जरूरत है जो न केवल विभिन्न क्षेत्रों के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकें बल्कि संकट के समय उनके साथ खड़े भी हो सकें। मुसलमानों को इस प्रकार के नेताओं की जरूरत है जो बदलते परिदृश्य में राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी सही तरीके से समझें। भारत में मुसलमानों के सामने जो जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान कोई एक नेता अकेले नहीं कर सकता। इस समय मुसलमानों को अपना ध्यान ऐसे लोगों पर केंद्रित रखना चाहिए जो शिक्षित, बाखबर, योग्य व चुनौतियों का सामना करने में आत्मविश्वास से भरे हुए हों। मुसलमानों को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े बिना अहम मामलों पर आवाज उठाए और न्याय की मांग कर सके। उन्हें सिर्फ स्टेज पर बोलने वाले नहीं बल्कि जमीनी सतह पर काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम आज की बात का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। टिकाऊ आर्थिक विकास।
दोस्तों कार्यक्रम टिकाऊ आर्थिक विकास के कनेक्ट के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम ईरान के तेल और गैस उद्योग के बारे में बातचीत करेंगे। मरियम मेहरदादी और गाहिम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
किसी भी देश के विकास के लिए मदर इंडस्ट्रीज का विकास करना एक बुनियादी शर्त है। मदर इंडस्ट्रीज उन उद्योगों को कहा जाता है जो अर्थव्यवस्था के विकास और अन्य उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और उपकरणों से दूसरे उद्योगों में बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जाता है। स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, सीमेंट, गैर धातु खनिजों, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को मदर इंडस्ट्रीज की श्रेणी में रखा जाता है।
आज की दुनिया में ऊर्जा, खासतौर से तेल और गैस, एक प्रभावशाली उत्पादन है। ऊर्जा विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की बुनियाद है। औद्योगिक देश बड़ी आर्थिक शक्तियां और इसी तरह से विकासशील देश बड़ी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के नए औद्योगिक देशों और विश्व के अन्य देशों में जारी प्रतिस्पर्धा और 2050 तक ऊर्जा की बड़ी जरूरत के कारण भविष्य में ऊर्जा के उत्पादन के लिए तेल और गैस की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी।
तेल और गैस से लाभ उठाने की तकनीक एक महत्वपूर्ण और पुरानी तकनीक है जो कोल तार को तेल के कुओं से एकत्रित करके विज्ञान के दायरे में शामिल हुई है। इंसान प्राचीन काल से ही तेल और गैस से परिचित था और रिसकर सतह पर आने वाले पदार्थों का उपयोग किया करता था। तेल के पहले कुएं की 1745 ईस्वी में फ्रांस में खोज की गई थी, जबकि पहली बार सन 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में तेल निकालने के लिए कुआं खोदा गया था। ईरान और पश्चिम एशिया में तेल उद्योग की शुरुआत 1908 में मस्जिद सुलेमान में तेल की खोज के साथ हुई। ईरान के तेल उद्योग के जीवन को एक सदी से अधिक समय बीत चुका है। इस मोटे काले तरल ने ईरानी लोगों के लिए कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास चलाए और अभी भी ईरानी अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
दो हजार अठारह के अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईरान में 155 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक तेल भंडार और 30 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस भंडार है और ये दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा भंडार वाले देशों में से एक है। हालांकि हाल ही में खुजिस्तान प्रांत में एक और विशाल ऑयल फील्ड की खोज की गई है। 50 बिलियन बैरल से अधिक तेल के साथ इस विशाल ऑयल फील्ड से ईरान के तेल भंडार में 30% से अधिक की वृद्धि होगी। ये वो भंडार है जिन्हें तेल निकालने पर अधिक खर्च नहीं आता है। नई ऑयल फील्ड खुजिस्तान प्रांत में बुसान और उम्मीदिये शहरों के बीच स्थित है और ये आवास के बाद ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है।
तेल भंडार में ईरान दुनिया में चौथे स्थान पर है। ईरान में 140 से अधिक हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 102 ऑयल फील्ड्स और 43 गैस फील्ड्स हैं। इन हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में लगभग 80 सक्रिय क्षेत्र हैं, जिनमें 62 जमीन पर और 16 समुद्र में हैं। गजसारान ऑयल फील्ड, मरून ऑयल फील्ड, आजादगान ज्वाइंट ऑयल फील्ड और आगाजारी ऑयल फील्ड ईरान के कुछ तेल के क्षेत्र हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर ईरान सावधानी पूर्वक योजना बनाकर निरंतर निवेश करके और क्षमताओं से लाभ उठाते हुए लंबे समय तक तेल का उत्पादन कर सकता है और कम से कम 170 वर्षों तक अपने गैस संसाधनों का वो इस्तेमाल कर सकता है।
ब्रिटानी शोधकर्ता डैनियल बर्गलिन का कहना है कि जब हम 21वीं सदी के भविष्य को देखते हैं तो गैस का प्रत्येक क्यूबिक मीटर कंप्यूटर विज्ञान के समान प्रगति और विशेषता प्राप्त करेगा और गैस की ऊर्जा तेल के विकल्प के रूप में लोगों के, कंपनियों और देश के लिए भारी धन जमा करने का कारण बनेगी। गैस की ऊर्जा उन ऊर्जाओं में से है जिन्होंने पिछले दशकों में सबसे अधिक विकास किया है। प्राकृतिक गैस इको फ्रेंडली होती है, इसलिए उसका बड़े पैमाने पर स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल विश्व की कुल ऊर्जा के 25% भाग की आपूर्ति प्राकृतिक गैस से होती है। विश्व के ऊर्जा भविष्य पर प्राकृतिक गैस का प्रभाव उस समय तक बना रहेगा जब तक इससे बेहतर किसी ऊर्जा की खोज नहीं होती है।
गैस के भंडार में ईरान दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लगभग 300 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। दूसरे शब्दों में दुनिया का 17% से अधिक गैस भंडार ईरान के पास है। हालांकि ईरान के 60% भाग में अभी अध्ययन का कार्य नहीं किया गया है। अब तक ईरान में 40 से अधिक गैस क्षेत्र और 90 से अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे जा चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान के संयुक्त हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में से एक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरान के पास अपने पड़ोसियों के साथ 28 संयुक्त तेल और गैस क्षेत्र हैं।
ईरान के सभी तेल और गैस क्षेत्र राष्ट्रीय तेल कंपनी के स्वामित्व में हैं, जो 4 कंपनियों के नामों के तहत तेल और गैस का उत्पादन करती है। ये कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से गैस निकालती है। गैस के उत्पादन के बाद उसे बिजली संयंत्रों और घरेलू उद्योगों को वितरण के लिए राष्ट्रीय ईरानी गैस कंपनी को सौंप दिया जाता है और पड़ोसी देशों को निर्यात के साथ ही घरेलू खपत के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है।
एक ओर तेल और गैस संसाधनों के लिए विश्व अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरत और दूसरी ओर ईरान के पास विश्व के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार होने के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी निवेश के लिए काफी संभावनाएं पाई जाती हैं। दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में ईरान में तेल और गैस उत्पादन की कम लागत का एक बड़ा अवसर है। ये एक ऐसा बिंदु है जो जर्मनी की तेल और गैस कंपनी में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के प्रमुख पीटर एडम जैसे लोगों की नज़रों से ओझल नहीं रहा है। कुछ साल पहले उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ईरान के तेल अनुबंधों के एक नए मॉडल का जिक्र करते हुए ये कहा था कि वो चीज़ जिसने पिछले कुछ महीनों के दौरान तेहरान के साथ बातचीत करने के लिए कई देशों को प्रेरित किया है और जिसके कारण अब हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो ईरान के आकर्षक तेल और गैस भंडार हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अमेरिका के JCPOA से निकलने और पश्चिमी निवेशकों पर फिर से प्रतिबंधों के कारण ये अवसर हाथ से निकल गया है, लेकिन एशिया की उभरती हुई आर्थिक शक्तियों के लिए ईरान के तेल और गैस उद्योग में निवेश का अवसर प्राप्त हो गया है। चीन ने हाल ही में ईरान के तेल और गैस उद्योग में $280 बिलियन का निवेश किया है।
ईरान के बुनियादी ढांचे और आधारभूत सुविधाओं में तेल का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन देश के नेताओं ने इस तथ्य की अनदेखी नहीं की है कि तेल पर देश की अर्थव्यवस्था का अत्यधिक निर्भर होना अर्थव्यवस्था की कमजोरी है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद क्रांति के दुश्मनों और पश्चिमी सरकारों ने ईरान के तेल और गैस उद्योग को निशाना बनाया और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने तेल राजस्व पर निर्भरता को हमेशा ही एक कमजोरी करार दिया है और अधिकारियों से अपील की है कि वे इस निर्भरता को कम करने के लिए भूमि प्रशस्त करें। ईरानी ऊर्जा शेयर बाजार की स्थापना तेल पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करने का एक समाधान है। इस प्रकार बाजार में बड़े खरीदारों के आने और छोटे स्तर पर लेन देन से पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रतिबंध प्रभावहीन होकर रह जाएंगे।
ईरान के चौथे पूंजी बाजार के रूप में ऊर्जा शेयर बाजार की 2012 में स्थापना हुई। प्रतिस्पर्धा के अनुसार इस बाजार को आकार दिया गया है, इसलिए ये बाजार घरेलू स्तर पर तेल के मूल्यों के निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यवस्थित लेन देन और निगरानी की सुविधा के लिए ईरान की एनर्जी स्टॉक मार्केट की स्थापना की गई। ईरान की एनर्जी स्टॉक मार्केट में अन्य देशों के शेयर बाजारों की तरह बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता हैं, जो प्रतिस्पर्धा के माहौल में लेन देन करके तेल के मूल्यों में संतुलन बनाते हैं। तेल और गैस के क्षेत्र में सक्रिय 30 ईरानी कंपनियां इस बाजार में अपने उत्पाद पेश करती हैं।
ऊर्जा शेयर बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लाभों में से एक लाभ है। देश में विदेशी रिफाइनरियों और उन उत्पादों के खरीदारों की उपस्थिति है। इससे प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होती है और देश में तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री की स्थिति और स्थिरता में सुधार होता है। उदाहरण स्वरूप ऊर्जा शेयर बाजार में पेट्रोल की ओर संकेत किया जा सकता है। सितारे खलीज फारस रिफाइनरी में 3 चरणों के उद्घाटन से ये रिफाइनरी रोजाना 4 करोड़ लीटर से अधिक पेट्रोल का उत्पादन करती है, जिससे ईरान घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा पेट्रोल का निर्यात भी कर सकता है। ईरानी रिफाइनरियों में उत्पादित पेट्रोल की गुणवत्ता और क्षेत्र में उपभोक्ता बाजार के मद्देनजर ऊर्जा विशेषज्ञ ऊर्जा शेयर बाजार में पेट्रोल की आपूर्ति में उछाल की बात कर रहे हैं। ऐसा बाजार जिसमें तुर्की, इराक, अफगानिस्तान और आर्मेनिया जैसे देशों के प्रवेश के लिए भूमि प्रशस्त होती है, जो ईरान से पेट्रोल खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आशा है प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे। प्रोग्राम के बारे में आप अपना विचार हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। और इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। मोहम्मद अली कुम्मी और साथियों को इजाज़त दीजिए। शुभरात्रि। खुदा हाफिज़। Thank you.